मंगलमय मंगल करण बीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं के सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की,
परम पूज्य मुनिश्री क्षम सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिश्री भव्य सागर जी महाराज की, मुनि संघ की।
हम सभी लोग कर्म बंध की प्रक्रिया समझ रहे थे और उस कर्म बंध की प्रक्रिया में नाम कर्म का बंध, उसकी 92 प्रकृतियों के बंध के बारे में तो समझ चुके थे। एक 93वीं तीर्थंकर प्रकृति है, उसके बंध की प्रक्रिया, वो 16 कारण भावनाएं भाने से तीर्थंकर प्रकृति बंध को प्राप्त होती है। बहुत विशुद्ध परिणाम होना चाहिए और 16 कारण भावनाओं से परिणामों में जब विशुद्धि आती है तब वो तीर्थंकर प्रकृति बनती है। और विशुद्धि भी घर बैठे नहीं आती, किसी केवली श्रुत केवली महाराज के चरणों में बैठ करके ही वो विशुद्धि आती है। और 16 कारण भावनाएं भी भाई और केवली श्रुत केवली के पादमूल में बैठ के भी 16 कारण भावनाएं करें, लेकिन अगर प्राणी मात्र के कल्याण की भावना नहीं है तब भी काम अधूरा रह जाएगा। तो 3 चीजें हैं, प्राणी मात्र के कल्याण की भावना, 16 कारण भावनाएं और साथ में केवली श्रुत केवली का पादमूल। इतनी विशुद्धि, इतनी कषाय की मंदता जब होती है तब किसी विरले जीव को ये तीर्थंकर प्रकृति बंधती है। अब हम क्या करें, हम कम से कम भावना तो भा ही सकते हैं, तो उसके लिए हम समझ रहे थे कि 16 कारण भावनाएं कैसे भाई जाएं, जिनसे कि हमारे जीवन में ठीक है तीर्थंकर प्रकृति के जितना पुण्य अर्जित ना हो पर हमारे मन में भी अपने कल्याण और प्राणी मात्र के कल्याण की भावना तो कम से कम बनी रहे, इसके लिए ये अपन समझ रहे हैं। उसमें 15वें नंबर की भावना है मार्ग पर भावना। मार्ग किसे कहते हैं, तो देखा जाए तो जिस पे चलने से महाजना एन गता सा पंथा, महान आत्माएं महाजन जिस रास्ते से जाते हैं वास्तव में वही पंथ है, वही मार्ग है। या ऐसा कह दें कि जिस मार्ग पर चलने से हम अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, या जिस मार्ग पर चल करके हम अपने राग द्वेष को घटा लेते हैं, ऐसा कह लीजिए। तो श्रेष्ठ मार्ग वही है जिस पे चलने से हमारी कषायें क्रमशः मंद होती हैं, और इतना ही नहीं एक दिन हम कषाय से रहित, पाप से रहित अपनी उस शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे मार्ग पर स्वयं चलना वास्तव में मार्ग प्रभावना वो कहलाएगी। बहुत कठिन है लेकिन ये तो एक तरह से मोक्ष मार्ग पर चलना हो गया, तो मोक्ष मार्ग पर पूरी तरह चलना इतना आसान तो नहीं है, तो हम कैसे करें फिर? तो कहते जो मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं उनके गुणगान करना, ये भी मार्ग प्रभावना है। और इतना नहीं, जिन वजहों से दूसरे व्यक्ति के मन में उस मार्ग पर चलने की भावना उत्पन्न हो जाए वैसे कार्य करना, ये भी मार्ग प्रभावना है। और जिन्होंने स्वयं अपने जीवन में उस मार्ग पर चलकर अपने शुद्ध बुद्ध आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लिया, उनके भी गुणगान करना, ये भी मार्ग प्रभावना। इतनी बातें हो गई। या तो हम स्वयं उस सच्चे मार्ग पर चलें, नहीं चल पा रहे हैं तो जो चल रहे हैं उनके गुणगान करें, या जो चलने के लिए हमें प्रेरित कर रहे हैं, या कि उन क्रियाओं के द्वारा जिससे कि उस मार्ग पर लोग चलने लगे, उसके ही कम से कम हम अभ्यास करें। दो तरह से हम कर सकते हैं प्रभावना मार्ग की, एक बाह्य में और एक अंतरंग में। अंतरंग में तो सीधा सीधा है कि हमारी कथनी और करनी में सामंजस्य हो, तो हम अंतरंग में मार्ग की प्रभावना कर सकते हैं, या कि हमारी कषायें मंद हो। वास्तव में धर्म की प्रभावना या मार्ग की प्रभावना अंतरंग में ही होनी चाहिए। आज वर्तमान में मार्ग की प्रभावना बाह्य में अधिक होती है, नहीं होती? प्रभावना तो होती है लेकिन बहुत बाहर बाहर उसके इंप्रेशन पड़ते हैं, भीतर कहीं कोई इंप्रेशन नहीं पड़ता, भीतर कोई असर उन सब चीजों का नहीं पड़ता। पर वास्तव में अंतरंग जो प्रभावना है वो तो जिस क्रिया के करने से हमारी कषायें मंद हो, वही मार्ग की प्रभावना है। तो उसके लिए जरूरी है कि हम जो कहें वो स्वयं जीवन में करें भी। युधिष्ठिर महाराज का उदाहरण सबके जीवन में प्रसिद्ध है, हमेशा याद करते हैं कि देखो एक जरा सी बात उनको सीखना थी तो जब जीवन में आ गई तब उसको मुंह से कहा। और अपन अपने साथ ये है कि अपने मुख पर बहुत सारी भली बातें हैं लेकिन वे भली बातें हमारे अपने जीवन में गायब रहती हैं। तब क्या हम उन अकेली भली बातों से मार्ग की प्रभावना कर पाएंगे? बाहर बाहर तो कर पाएंगे पर अपने जीवन में तो ना कर पाएंगे। अपने जीवन में तो प्रभावना तभी होगी जब उन भली बातों को अपने जीवन में भी हम उतार लेंगे। दान, पूजा, शील, उपवास, महान महान प्रकार की तपस्याएं, ज्ञान, इन सब के माध्यम से, ये सब वो क्रियाएं हैं जिनसे कि मार्ग की प्रभावना होती है। अब अपन इनको एक एक क्रम से देख लें। आज वर्तमान में मार्ग की प्रभावना करने के लिए अपन इन सब चीजों का आलंबन लेते हैं। मुख्य रूप से ज्ञान के द्वारा होती है, आचरण के द्वारा होती है, जप तप और उपवास या महापूजाओं के द्वारा भी होती है। शांतिनाथ भगवान की 16 दिन पूजा की थी रावण ने। रावण ने 16 दिन शांतिनाथ भगवान की पूजा करी थी। वैसी वाली पूजा करने के लिए नहीं कह रहा हूं। रावण ने जो शांतिनाथ भगवान की 16 दिन पूजा करी थी और काहे के लिए करी थी? बहुरूपनी विद्या सिद्ध हो जावे। और बहुरूपनी विद्या काहे के लिए सिद्ध हो जावे? रामस्य मृत्युर भवेत्, रामचंद्र जी की मृत्यु आसानी से हो सके, इसके लिए शांतिनाथ भगवान की 16 दिन पूजा करी। भैया ऐसी महापूजा विस्तारने से भी धर्म की प्रभावना नहीं होती। बगुला भी ऐसा ध्यान कर लेता है, नदी के किनारे बैठा, लेकिन इंटेंशन क्या है? मछली पकड़ूंगा, शांति से बैठूंगा तो ही तो पकड़ में आएगी, हिलते डुलते रहूंगा तो मछली भग जाएगी। अगर इस दृष्टि से हम अगर आज के समय में देखो तो पूजा पाठ इसी दृष्टि से होते हैं। और किस दृष्टि से होते हैं मुझे बता दो। महापूजा विस्तार लो, 8 दिन की, 2 लाख रुपया खर्चा हुई है, 4 बच जाए, ये मार्ग प्रभावना नहीं, ये तो धन और संपदा कमाने की भावना है। मेरे जीवन का कल्याण होगा, महापूजा में मैं बैठूंगा जिससे कि मेरे अपने परिणाम निर्मल होंगे और उन परिणामों की निर्मलता से दूसरे लोगों को भी अपने परिणाम निर्मल करने का अवसर मिलेगा, तो समझना कि हाँ आपने वाकई में। और महापूजा के द्वारा जैसे मैना सुंदरी ने महापूजा करी थी, अपन क्या करेंगे, एक हो गए हैं सागर में। देखो वो उनका नाम जैन नहीं थे वो, अब वो याद नहीं आ रहा, बहुत प्रसिद्ध रहे वो, और उन्होंने सिद्ध चक्र विधान कर रहे। बताइए,
राजगढ़ भाई भाटिया जी,
भाटिया जी, तो भाटिया जी जो है जैन नहीं थे भाई बर्थ, लेकिन उनकी बहुत रुचि थी मंदिर में जाएंगे, हमारी तरफ से विधान करो, हमारी तरफ से भगवान के मंदिर में, और विभिन्न प्रकार से मंगल द्रव्य इत्यादि भेंट करते थे, सामग्री भेंट करते थे, और उसके माध्यम से जो है, हाँ उसके माध्यम से जो है उन्होंने अपने जीवन का कल्याण किया। और इतने नहीं, उनको देख करके और लोगों के मन में भी पूजा पाठ में रुचि हुई, और अपन ऐसी पूजा करते हैं जिससे कि दूसरे के मन में पूजा पाठ की अपेक्षा और अपना संसार बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हो जाए, तो वो मार्ग प्रभावना नहीं कहलाए। मैना सुंदरी ने जो पूजा पाठ किया था वो काहे के लिए किया था, अपने परिणाम निर्मल होंगे तो असाता कम होगी, तो साता के उदय में सब अच्छा हो जाए, इसके लिए। अपने कर्मों को काटने के लिए हमने तपस्या करनी है या कि हमें पूजा पाठ करनी है, पूजा पाठ अकेले गा बजा करके, हल्ला करके, दूसरे को तकलीफ में डाल करके, मगरे पे चुंगा लगा करके, हाँ वो स्टाइल, अब आ गई स्टाइल, वो उससे नहीं होती है। जीव राशि इतनी मर रही है मान लीजिएगा, और हम कर रहे हैं भव्य पूजा, और जीव राशि अपार उसका मरण हो रहा है, तो क्या हमारी पूजा मार्ग प्रभावना का कारण बनेगी क्या? नहीं, हमें विचार करना पड़ेगा कि आज मार्ग प्रभावना के नाम पर हम कितनी सारी चीजें करते हैं, उन सब में वास्तव में हमारे जीवन में कोई परिवर्तन होता है, या कि दूसरे को अपने जीवन में परिवर्तन करने का संदेश मिलता है या नहीं मिलता। अगर वास्तव में देखना है तो मार्ग प्रभावना करी तो जटायु ने करी मार्ग प्रभावना, सीता जी का हरण करके वही रावण लेकर के जा रहा है, अनीति के विरोध में खड़े होना मार्ग प्रभावना है, और नीति पर चलना मार्ग प्रभावना। मार्ग प्रभावना अनीति करते हुए चार पैसे दान देने से मार्ग प्रभावना नहीं होती, नीति न्याय पूर्वक अपना कार्य करने से मार्ग की प्रभावना होती। अनीति जहां होती उसका समर्थन नहीं करूंगा, उसके साथ नहीं रहूंगा, मैं छोड़ दूंगा उसका साथ, अनीति का साथ छोड़ दूंगा, अनीति करने वाले का नहीं, अनीति का साथ छोड़ूंगा, अनीति करने वाले के तो साथ रहूंगा ताकि वो हमारे संगे रह के नीति सीख जावे। हाँ, पापी को थोड़ी छोड़ देंगे हम पाप छोड़ेंगे? पापी को हम अपने संगे रख के उसको परिवर्तन करेंगे? अंजन से तारे कुदी सो जय 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 जिन देव, जिनके चरणों में आकर के अंजन जैसे पार हो गए, लेकिन अंजन का प्रभाव भगवान पे नहीं पड़ा, भगवान का अंजन चोर पे पड़ा, ये ध्यान रखना पड़ेगा। प्रभाव किसका किसके ऊपर, प्रभावना कैसे होगी? हमारे अपने जीवन में हम इतना अपने जीवन को सुंदर बना लें, इतना पवित्र बना लें कि जिसका प्रभाव सामने वाले की अपवित्रता को भी कम करने में निमित्त बन जाए। तो जटायु जो है अपनी नीति पर अड़ा रहा और अनीति के विरोध में यहां तक कि उसने अपने प्राण भी दे दिए, तब भी उसने मार्ग, आज भी हम उसको याद करते हैं, उसकी नीति को आज भी याद करते हैं, उसके कार्य की प्रशंसा आज भी करते हैं, यही तो प्रभावना है। हम गौर से देखें हमारे जीवन में हमने कोई ऐसा त्याग तपस्या ज्ञान दान इत्यादि किया है जिससे कि लोगों को भी वैसा ही करने की प्रेरणा मिली हो तो समझना कि प्रभावना करी है। अपने जीवन में अपन ने कुछ ऐसा किया हो जिससे कि दूसरे को भी वैसा करने का, अपन तो ऐसा कुछ करते हैं जिससे कि दूसरे को उससे विपरीत ही करने का मन होता है या अपने कॉम्पिटिशन में खड़े होने का मन होता है। आज धर्म की प्रभावना में भी कॉम्पिटिशन, उनने इतनी करी थी हम उससे ज्यादा करेंगे। जीवन में हमारे भले ही न हो लेकिन बाहर तो हम करेंगे। नहीं भैया, ऐसी बाह्य प्रभावना से कुछ नहीं होने वाला, अपने अंतरंग में जितनी निर्मलताएं जितनी कषाएं, हम तो आपसे यही कहेंगे आखिरी तक हमारे जाने के बाद भी, आप इतना ही कर लेना कि हमारी कषाएं मंद हुई तो हम समझेंगे कि हमारा आपके बीच 4 महीने रहना सार्थक हो गया। बाकी आपने क्या किया क्या नहीं किया, जिसकी जितनी सामर्थ होगी वो उतना करेगा, पर इस बात में तो सबकी सामर्थ है कि अपनी कषाएं। आचार्य जी कहते कि इसमें कौन से बल की आवश्यकता है, इसमें कौन सी पहलवानी की आवश्यकता है, अपनी कषाएं मंद करने में तो क्या, और कुछ काम करना हो तो भैया आप धन भी चाहिए पैसा भी चाहिए 4 आदमी चाहिए, लेकिन इसके लिए तो कुछ नहीं चाहिए, इसके लिए तो अपने आप एक अकेले पर्याप्त हैं, अपने अपने परिणाम निर्मल बनाने के लिए कोई नहीं चाहिए, बाकी सब चीजें करने के लिए सबकी मदद चाहिए। तो आवश्यकता इस बात की है कि अपनी कषायें मंद करने का हम उपाय करें। 2-3 चीजें और समझ लें। अज्ञान तिम्र व्याप्ति मपाकृत्य यथा यथम जिन शासन महात्म प्रकाशा स्यात् प्रभाव। जिनेंद्र भगवान के शासन की प्रभावना काय से होती है, कहते अज्ञान का अंधकार फैला है, लोग अपने शरीर को ही आत्मा मानते हैं और शरीर के ही पोषण में लगे हैं, शरीर की ही सेवा कर रहे हैं, उन्हें इस बात का ज्ञान देना, कह रहे भाई शरीर तो सदुपयोग के लिए मिला है, तपस्या के लिए मिला है, इससे तपस्या कर लो, इससे तो अपना कल्याण हो जाएगा। ये शरीर इसके लिए नहीं मिला है कि इसका पोषण करते रहो, 24 घंटे इसकी सेवा करते रहो, इसके मर जाने से हम नहीं मरते हैं, ये हमारे भीतर ज्ञान उत्पन्न हो जावे। ऐसा अज्ञान जो सब दूर छाया उसको दूर करना वास्तव में धर्म की प्रभावना। अज्ञान तिम्र व्याप्ति अपाकृत यथा यथम, जितनी अपनी सामर्थ हो उतना, अकलंक और निकलंक स्वामी ने की थी ज्ञान के माध्यम से धर्म की प्रभाव। आज अपन को अपना ज्ञान जो अपने को प्राप्त हुआ तीर्थंकरों से, आचार्य परंपरा से, आचार्यों से, गुरुओं से, उस ज्ञान का अभ्यास ही नहीं करते हैं। भैया गुरु बहुत बड़े हो सकते हैं, मंदिर बहुत बड़ा हो सकता है, शास्त्र बहुत बड़े हो सकते हैं, लेकिन इन सब के बड़े होने से प्रभावना नहीं होती, प्रभावना होती शास्त्र के स्वाध्याय से और गुरुओं के आचरण को अपने जीवन में उतारने से और भगवान के दर्शन करके अपनी श्रद्धा बढ़ाने से प्रभावना होती। अकेले बड़े भगवान हैं, बड़ो मंदिर है, बड़े महाराज हैं, या कि बड़ो शास्त्र है, समय सार जी बहुत बड़ो शास्त्र है, सुबह ने मूड पे धरे रहो तो भी कुछ नहीं होने। हां उस शास्त्र में क्या लिखा है उसका मुझे अभ्यास करना पड़ेगा। मुनि महाराज बहुत पहुंचे हुए हैं, बहुत बड़े हैं, बहुत तपस्वी हैं, हम रोज उनके चरणों में जाके बैठते, हां ठीक है रहोगे वो बड़े, हमें उससे क्या होने वाला हमारे जीवन में उनके बड़े होने से, हमारे जीवन में होने वाला ये है कि उनके चरणों में बैठ के उनके जैसा आचरण हमने बनाया होगा तो हमें प्रभावना हो पाएगी, नहीं तो प्रभावना नहीं होगी। भगवान के मंदिर बड़े मंदिर बनाने से प्रभावना नहीं होती, बहुत बड़े भगवान लाने से प्रभावना नहीं होती, हमारे भीतर उनके प्रति श्रद्धा होगी तो प्रभावना होगी। तो प्रभावना जो है बाह्य में तो है ही, लेकिन अपन बाह्य में ही कर रहे हैं, अंतरंग में अपने जीवन में वो चीज नहीं आती। मुझे हमेशा लगता है कि कहने की आवश्यकता ना पड़े कि मैं ऐसा हूं मैं वैसा हूं। अरे मेरे जीवन से ही, जब गांधी से पूछा जाता था गांधी जी से कि आपके जीवन का दर्शन क्या है, तो कहते मेरा जीवन ही मेरा दर्शन है। आ जाओ मेरे जीवन को देख लो, उसी से कोई चीज शिक्षा लेनी हो तो वही मेरा दर्शन, वही फलसफा है, वही मेरी फिलॉसफी है, मेरे जीवन जीने की स्टाइल मेरी फिलॉसफी है, और कोई मुझे वाणी से कोई फिलॉसफी नहीं बतानी है, ना कोई दर्शन देना, मेरा जीवन ही दर्शन। क्या हम इस तरह अपने जीवन को ही दर्शन नहीं बना सकते हैं? हम अपने आचरण से, ज्ञान से भी होती है और आचरण से भी होती है, ऐसा नहीं है। आचरण की निर्मलता, सरल आचरण हो, श्रद्धा हमारे मन में हो, हमारे अंदर सदाचार हो, कम से कम सदाचार ही हो। मुनि महाराज 5 महाव्रतों का पालन करते हैं, तो श्रावक कम से कम सदाचार का पालन कर ले। हम अनुव्रत की भी नहीं कह रहे हैं आपसे, सदाचार। सब समझते हैं सदाचार कैसा होता है, भैया व्यसन के त्यागी हो। व्यसनी आदमी कितना दान कर देवे उस दान से प्रभावना नहीं होगी, जितनी की व्यसन छोड़ देवे तो प्रभावना होगी। पैसा छोड़ देवे वो तो उतनी प्रभावना नहीं होगी व्यसनी व्यक्ति, और व्यसनी व्यक्ति अगर छोड़, खोटा धंधा करने वाला चाहे जितनी संपत्ति दे देवे दान में, उससे प्रभावना नहीं होती, खोटा धंधा छोड़ देवे तो अबे प्रभावना शुरू हुई। अरे भैया देखो उनने इतनो बड़ो हतो काम लेकिन छोड़ दिया उन्होंने, खराब काम है। जैसे हमने आपको उदाहरण सुनाया था कि साहू फैमिली में और कैरोनो शूज बहुत बड़ी कंपनी के शेयर्स उनके थे, जब वो आए थे थुवोन जी तो आचर्षी को 2 दिन उनने आहार देने की चेष्टा करी, और एक दिन तो शुरू में पहुंचे तो थोड़े लेट हो गए थे, तो आचर्षी ने जैसे ही उनको देखा तो आखिरी अंजलि पानी पी के बैठ गए कि अब इनसे लेने पड़े ना, बंद करेंगे तो इतने बड़े आदमी की इंसल्ट होगी, देने आए हैं। सो चुपचाप बैठ गए। दूसरे दिन तो वो और जल्दी आ गए कि कल तो देर हो गई थी, आज तो दे ही ले हैं। सो आधे बीच में आ गए, तब भी आचर्षी उनको देखते ही साथ और जल्दी जल्दी जल इत्यादि लेके, दूध लेके, और जब तक वो पानी दे दो चाहें जब तक तो बैठे ही, अंजलि छोड़ दी। अब तो समझ गए वो कि हमारी वजह से हुआ ये, महाराज क्या गलती है, हमसे आहार नहीं लेना था तो बता देते, आपने क्यों कम आहार लेके बैठ गए। तो कहते नहीं, अच्छा नहीं लगेगा आपको, बुरा नहीं लगे तो हम आपको कहें। कहो महाराज, जब तक आपकी कोरोना शूज कंपनी है तब तक हम आपसे आहार नहीं ले पाए। अरे महाराज हमसे कहा तो होता, आपने अब भी फोन करते हैं। फौरन जो है दिल्ली फोन किया, सारे शेयर्स जितने थे बुलाए और सब पे कैंसिल के साइन कर दिए। दूसरे दिन ठाट वाट से आचार्य को उससे हुई प्रभावना, जितनी जनता थी उसने कहा जय जयकार हो गई। अरे वाह, ये है प्रभावना। और साहू जी जब आए थे 2 दिन तक रुके रहे तो प्रभावना नहीं भाई, लेकिन उन्होंने जैसे ही अपने शेयर कैंसिल किए, लेकिन अपन चाहते हैं कि नहीं हमारो काम भी चलत जावे। महाराज थोड़े तुम तो जा बताओ कौन सो प्रोग्राम करने में कितने पैसा देने, बाकी हमारा धंधा चलन दो, आपको भी काम चले हमारा भी चले, आप खुंचाने जो और हमें अपनो करन दो, आप तो आशीर्वाद और दे दो, समाव अच्छो चले, जिससे हम आप किसी भी अच्छी कर सकें, आप कौन जो काम करवाऊं वो भी सब कर सके। नहीं भैया, इससे धर्म की प्रभावना नहीं होती। देखो 1 मिनट में उन्होंने जैसे ही त्याग किया उन चीजों का, को तो धर्म की प्रभावना कितनी हुई कि नहीं। ऐसे होती धर्म की प्रभावना, आचरण में परिवर्तन आने से, ज्ञान के माध्यम से। अकलंक निकलंक स्वामी का तो है ही, और जहां कथनी करनी की एकता होती है वहां भी धर्म की प्रभावना होती है। ये सब जो है धर्म की प्रभावना करने के उपाय हैं। आचार्य महाराज के जीवन की और छोटी छोटी 2 घटनाएं सुनाने का मन है, वो बताता हूं आपको कि कैसे आचरण से प्रभावना, एक दूसरे को देख करके भी जो है हमारे आचरण में परिवर्तन आता है। कि अरे हमको भी इस तरह करना चाहिए, जब ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। शायद मैं ऐसी घटना कोई पहले सुना भी चुका हूं, पर फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, कोई हर्जा नहीं है। वो अच्छी चीजें तो हैं ही, उनको तो हमेशा याद में, आज सुबह से वो चीज याद आ गई कि कैसे हम अपने जीवन में दूसरे के जीवन को देख करके अच्छाइयों को लाते हैं, तो उसका जीवन सार्थक हो गया जिसने वो कार्य किया। उसके बीच में एक और याद आ गई, जब बड़ी दिक्कत है बहुत बहुत, और फिर हम बाद में सोचते कि हम जब बचा के रख लें बाद में सुना दें, सुबह बिसर जाते, फिर नहीं याद आता। याद रहेगी आचार्य वाली बात, भूल जाए सुबह पहले सुनाए दे रहे। कटनी वाले पंडित जी सुनाते कि वो गए दक्षिण भारत यात्रा के लिए, और वहां पर एक गांव में पहुंच गए। अब भोजन का समय हो गया, तो अब भोजन बना के फिर आगे की यात्रा करेंगे। पहले के लोग इस तरह का करते थे, बूढ़े पुराने लोग। अब की बात अलग है कि होटल में घुस जा सो चाय जो कचू खा के यात्री तो करने और का। शिखर जी की यात्रा कौन जा रहे हो भैया, भोजन कर रहे होटल में, वो जा रहे शिखर जी की यात्रा कौन जी। शिखर जी की यात्रा से धर्म प्रवाह हुई है क्या कचू, या बताओ। पहले के लोग तीर्थ यात्रा करके धर्म प्रभावना कर लेते थे, जाते थे तो लोग भेजने जाते थे कि भैया लौटे आए तो ठीक है, नहीं लौटे तो ठीक है, काहे बैलगाड़ी में बैठ के जाने, छह महीना में पहुंचने, छह महीना में लौटे। हमारे सामने सामने की हमारी देखी बात है, ऐसे कह रहे हम, बैलगाड़ी से गए थे और बाद में लौट के आए थे तो भारी जुलूस निकला था, लोग सब उनके पांव पड़वे गए थे कि आपके चरण पड़ गए शिखर जी में। और अब तो सवेरे बैठो संजाग होते हो, कैसे संजाग सवेरे बैठो सोते को खबर तो नहीं लगत कि शिखर जी हुआ है भैया जी ने अपन कचू। उससे कोई देख लो आज शिखर जी जाने से कोई प्रभावना नहीं हो रही, क्यों, वो काम ऑर्डिनरी हो गया। पूजा पाठ करने से कोई दूसरे के अंदर इंप्रेशन ही नहीं पड़ रहा, क्यों नहीं पड़ रहा पूजा पाठ करने से, क्यों, अरे अब हो रहा हो ये, अब उनको विधान हो रहा 16 दिन को, कहा है अपन को कचू नहीं, अभी अपनों कर रहे सुकरत रहे में, अपन तो कब देख भी लो नहीं गए, हम भी नहीं गए, कहे अब रुचि नहीं, जागृति नहीं होती। क्यों नहीं जागृत होती, क्योंकि उसके जीवन में वो चीज नहीं है जो वो बाहर कर रहा है। ये कह रहा हूं मैं, जीवन में बात चीज में हो बाहर हो करी जावे तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सामने सामने अपन देख रहे हैं, आज पंच कल्याणक होते हैं, पंच कल्याणक कितने होते, कितने लोग जात आसपास के देख भी, कहे बहुत होने लगे, पहले एक आध बहुत तो सन 68 में बहुत तो रैली में सब भगत गए थे, वो कचु व्यवस्था नहीं आती, वो तो रुकवे की अपना अपना टेंट लगा तो इसको लगा लो तो वही के नीचे हमें ख्याल है, वही टेंट पे जो है कुर्सी धर के खड़े भूखे परिक्रमा देखी थी, सन 68 की बात है, और हमसे बूढ़े पुराने बैठे उनने और रथ देखी हुई है, है? के क्यों होती थी पहले प्रभावना, आज उन्हीं चीजों से क्यों नहीं हो रही है, इस पे विचार करना। वो सुनाते थे कि हम गए वहां पर, अब भोजनों का टाइम हो गया, हम पानी की उसमें थे कि पानी कहां से, वो तो कुआं ही नहीं था, अब कुआं ढूंढने गए, सोचो आप कुआं ढूंढ रहे पूछ रहे हैं, एक बाबा जी मिल गए, कहते अच्छा कुएं की इतनी जरूरत क्या पड़ गई आपको, सुकेती भाई मैं तो कुएं का पानी ही पीता हूं। अरे कहने लगे एक आध दिन नल को पी लो, दक्षिण भारत में वो कहने लगे, कहने लगे हम तो जिंदगी भर के लिए, कहती आपका जिंदगी भर का त्याग और दूसरे का नहीं पियेंगे कुएं का, कहती हाँ कुएं का ही पियेंगे। वो पंडित जी कहते हैं कि हम तो सोच रहे थे जो कैसो आदमी हमसे ऐसी बातें कर रहा हो, वो कह ले जैसे ही हमने कहा कि हमारा तो जीवन भर कुएं के पानी पीने का नियम है, तो कहती उसने हमारे पैर पड़ लिए और रोने लगा, कहता कि मेरे जीवन में कुआं बनाना सार्थक हो गया, आओ बाबा जी हमने कुआं बनाया आज 40 साल हो गए, हमने ऐसा तो कोई आदमी नहीं देखा, हमारे कुआं पर जो दुनिया पानी भरती है हमें उससे सुख नहीं मिला, आज लग रहा है कि हमारा कुआं बनाना यहाँ सार्थक हो गया। आप ऐसे व्यक्ति जो कि सिर्फ कुएं का ही पीते हैं और एक ही कुआं है गाँव में और आपको उसका पानी, बताइए उस व्यक्ति ने, पंडित जी ने तो प्रभावना करी ही, उसके जीवन में क्या असर पड़ा उस उनके कुएं के पानी पीने का, बताइए आप, वो गदगद हो गया कि मेरा जीवन सार्थक हो गया। आप जैसे व्यक्ति मिल गए जो कि आज वर्तमान में अपन जो है इस तरह की बातें करते ही नहीं है, जिनसे कि हमारे आचरण से हमें याद है कि आगरा के अंदर जब दर्शन करने गए थे महावीर जी के अंदर, तब टांगे वाले से अगर कहें 5:30 बजे के भैया जल्दी चलो तो कहता जैन साहब अब भी चलता हूं, कैसे समझ गया वो जैन साहब, क्योंकि 5:30 बजे तो अंथव की चिंता वो ही कर सकता है और किसी को जल्दी नहीं है, कर लें 7 बजे कर लें, कौन कछु बड़ी बात, सब तो कर रही दुनिया कर रही, कौन हम अकेले कर रहे, देखो अपन ऐसा अपने मन में विचार आ जाता है, लेकिन अपने जीवन में इसको कहते प्रभावना। मैं आपको कहना यह चाह रहा हूं, मैं आपको कोई उड़ाना नहीं देना चाहता ना, आप इसको कोई कमेंट समझिएगा, इसको यह समझिएगा कि अपन अपने जीवन में अंतरंग में कुछ करेंगे तो ही प्रभावना हो। आचार्य श्री ठंड के समय में किसी को उपवास नहीं देते, किसी को भी नहीं, क्योंकि उनने खुद करके नहीं देखे थे, ठंड में उपवास करना बहुत कठिन माना जाता है, बारिश के दिनों उपवास करना, गर्मी में भी एक बार कर लेगा हिम्मत करके, लेकिन ठंड में बहुत कठिन होता है। मरण तुल्य वेदना हो सकती, अत्यंत शीत पड़े और कोई उपवास करे तो निर्जप। आचार्य जी ने एक उपवास किया ठंड के दिन, दिसंबर के लास्ट या जनवरी के फर्स्ट वीक की बात, 7 डिग्री टेम्परेचर रात का, नैनागिर में जल मंदिर में रुके। सोचो आप, चारों तरफ से पानी और ठंडी हवाएं, और एक उपवास हुआ। हम लोगों ने कहा ठीक है, आचार्य श्री कोशिश कर रहे हैं, स्वयं करके देख रहे हैं, अपन को फिर देंगे, कोई को नहीं देते थे। और दूसरे दिन हम लोगों ने सोचा कि अब उठेंगे आचार्य श्री, मगर वो काय को उठे, वो तो प्रसन्न चित्त अपने आनंद से बैठे हुए थे। हम लोगों ने कहा चले शुद्धि के लिए, कहते करो शुद्धि। हम लोगों ने सोचा कि ठीक है, हम लोगों को कह रहे हैं कि पहले तुम करो फिर आते हैं हम लोगों ने शुद्धि कर ली, पहुंचे, वो फिर भी ज्यों के त्यों बैठे। उनका कहला आज तो हमारा विचार है कि एक और करें। हाँ, दूसरा उपवास, एक उपवास तो हो ही चुका, एक और करेंगे। अब तो उसमें से जो समय सागर जी, योग सागर जी बड़े महाराज हैं जो हमेशा करते रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि जब आप उपवास करें तो हम भी करते हैं आज का, एक तो हमें भी देना पड़ेगा, जब आप दो कर सकते तो एक और। कई महाराजों ने उसमें से जो है अपन का मन भी, मन में भी आया कि अपन भी कर पाते नहीं, लेकिन अपनी शक्ति नहीं है, चलो कोई बात नहीं, उठते हैं। मन मार के आहार के लिए उठे, जो उठे भी मन मार के उठे। देखो आप, महाराज तो आहार नहीं कर रहे हैं, वो तो तपस्या कर ही रहे हैं, और जो देख रहे हैं उनके मन में भी ललक उत्पन्न हो गई कि हम भी ऐसा ही करें। ये है मार्ग प्रभाव ना। और अब देखना आप, तीसरे दिन हम लोग सोच रहे हैं कि अब तो आचार्य श्री जरूर उठेंगे, लेकिन ऐसा सोच नहीं सकते थे। पहली बार देखा हमने, ये सन 87 की बात है, जब आचार्य श्री को दीक्षाएं वगैरह बड़ी बड़ी देनी रहती हैं तो वैसी ही तपस्या करते वो। हम लोगों को जब दीक्षा दी थी तो एक उपवास एक आहार, एक उपवास एक आहार 16 दिन तक किया था, 1 महीने में पूरा। हम लोगों ने पूछा कि आप क्यों करते हैं इस तरह, कहते कि बहुत पुण्य अर्जित करना पड़ता है तब तुम्हारी दीक्षा हो पाएगी। तुम स्वयं भी मौन दे देते हैं दीक्षा देने वाले को महीने महीने पहले से, नहीं तो कहते थे कि हमने देखा है कि जिसकी दीक्षा होनी है वो आखिरी दिन कहो ऐसा बीमार हो जाए कि बैठ तक न पाए दीक्षा के लिए, और दूसरे की हो जाए वो की जगह जो उनकी सोची न हो ऐसा। तो वैसा दीक्षा देनी थी उनको, इसलिए तेला। अब तीसरा उपवास, जैसे ही हमें मालूम पड़ा कि तीसरा उपवास, हमने कहा अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो आप चाहे मना करो चाहे कुछ भी, जा करके हमने कहा आज तो हम भी करेंगे। जब आप कहने नहीं नहीं तुमसे नहीं होगा, और बहुत ठंड बहुत है और तुम्हारा शरीर वैसा नहीं है, हमने कहा नहीं आज जब आप तीसरा कर सकते हैं, अगर आप उठ रहे हो आर को तो हम भी उठ रहे हैं। कहले ऐसी नकल नहीं चलेगी, हमने कहा नहीं हम ऐसे ही वाली नकल अच्छी है, इसमें क्या हार जाए। और फिर तीसरा उपवास, मैं अभी जो कहना चाह रहा हूं, ये सब बातें तो कह ही रहा हूं, जो कहना चाह रहा हूं वो आपको बताता हूं। और तीसरा उपवास आचार्य श्री का है, और हमें उन्होंने एक उपवास उस दिन बहुत जिद करने से दे दिया। और शाम को हम पहुंचे हैं उनकी भैया वृत्ति करने के लिए कि आपका तीसरा उपवास है, और वो अपने पास बिठा करके सिर पे हाथ फेर रहे हैं, नहीं तुम्हारा उपवास है आज कैसा है, ठीक है। 3 दफे पूछ चुके वो, सुबेरे से उठ करके पूछ रहे हैं तुम्हारा कैसा, उनके 3 हो चुके। जबकि अब बताइएगा कि ये बात जिंदगी भर जब भी उपवास करूंगा तब याद आएगी कि नहीं, ये मार्ग प्रभावना होगी कि नहीं होगी। जो देख रहा है वो यही देख रहा है कि देखो उनके खुद 3 उपवास हैं, अपनी सेवा के लिए नहीं कह रहे, कह रहे देखो उसका उपवास है आज, थोड़ा उसके पैर दबाओ, उसकी सेवा करो, थोड़ा अमृत धारा लाओ, लाओ अमृत धारा लाओ, और सुनो तुम पहले उठ जाओ आहार के लिए। आप बताओ प्रभावना अपने आचरण के साथ दूसरे के प्रति वात्सल्य रखने से भी होती, सबका कल्याण हो, मेरा तो मैं कर ही रहा हूं और सबका कल्याण हो, ऐसी भावना से जो अपना कल्याण किया जाता है उससे मार्ग की प्रभावना। हम तो अपने जीवन को अच्छा बना ही रहे हैं, लेकिन मैं अपने जी मैं इतने उपवास कर रहा हूं, तुम क्या सब चलो तुमसे नहीं होता, ऐसा कह दे अगर तो तुम काकर हो। नहीं, कर सकते हैं अपने जीवन से ऐसा उनको हम मार्ग दें। वास्तव में ऐसे और भी बहुत उदाहरण है भैया, आचार्य श्री ने मुक्तागिरी में एक उपवास दूसरा कर लिया, सोच रहे हैं अब तीसरा हो गया, चौथा, पांचवा, पहली बार हमने अपने जीवन में निर्जल नौ उपवास आचार्य श्री ने किए। अब बताइए, पूरी जिंदगी आप कुछ भी कर कहते रहो उससे प्रभावना नहीं होगी, और उस उन क्षणों में और दसवें दिन नौ उपवास भी कर लिए, चलो कोई बात नहीं, दसवें दिन ठीक वैसे ही जैसे कि नौ उपवास के पहले थे, वैसे ही प्रसन्न चित्त और बाहर उठ करके आ रहे हैं, भले ही दो अंजलि पानी ले पाए मूंग की दाल का, और दसवां दिन हो गया, क्योंकि नौ दिन के बाद जाता नहीं भीतर, अब जनता खड़ी है देख रही है। इससे क्या मिलता है? शिक्षा। भारी तपस्या करने से भी मार्ग की प्रभावना होती, बहुत ज्ञान से भी मार्ग की प्रभावना, और भारी भगवान के प्रति श्रद्धा। ये पूजा इत्यादि क्या है? श्रद्धा व्यक्त करने की। तो देखो तीनों चीजों से हो गई, हमारी अपनी श्रद्धा से भी प्रभावना कर सकते, ज्ञान से भी, और आचरण की निर्मलता से भी हम धर्म की प्रभावना कर सकते हैं। भैया अपने जीवन में जिससे आचरण नहीं होता उसको ज्ञान बढ़ाना चाहिए, जिसके क्षयोपशम नहीं है उसको कम से कम अपनी श्रद्धा तो बढ़ानी ही चाहिए। श्रद्धा बढ़ाने में क्या लगता है? हम तो खूब भगवान के पूजा पाठ करते, महाराज हमसे स्वाध्याय होत नहीं है, बुद्धि है नहीं है, और शरीर हमारा तो नहीं है कि हम व्रत उपवास कर सकें। कोई बात नहीं, न करो व्रत उपवास, न करो स्वाध्याय, पूजा पाठ तो, और उस पूजा पाठ का परिणाम क्या होवे कि कषाय मंद होवे, बस हो गई प्रभावना। अकेले पूजा पाठ, रावण जैसी पूजा पाठ की चर्चा नहीं कर रहे हैं। पूजा पाठ में मन लगता है तो खूब ठाट बाट से पूजा करो, लेकिन उस पूजा का फल अपने जीवन में क्या मिले? अपनी कषाय मन। देखो भैया कितने अच्छे व्यक्ति हैं, कछु पढ़े लिखे नहीं है ज्यादा, न कछु व्रत उपवास करत, लेकिन श्रद्धा बहुत। हम तो इनको देखते हैं कि चाहे ठंड हो चाहे कैसा हो, जी फौरन सवेरे मंदिर में दर्शन कर भी आऊ, और आदमी लोगों से अच्छे से बोलते, प्रेम से बोलते। भाई ये प्रभावना हो गई, मार्ग प्रभावना करने की भावना होने से भी तीर्थंकर प्रकृति बनती है, बताओ। और जो उस मार्ग पे स्वयं चलने लगे और चलने वालों का साथ देवे, उसके द्वारा तो प्रभावना होगी ही होगी। ऐसे अपन भी भावना बनाएं कि जो सच्चा मोक्ष मार्ग है, जिसके द्वारा जीव अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, उस मार्ग पे अपन चलें। नहीं चल पाते तो उस मार्ग पे जो चल रहे हैं उनकी मन वचन काय से अनुमोदना करें, और अगर बाबी नहीं कर पावे तो भैया कम से कम भावना तो भावें कि मैं भी मोक्ष मार्ग पर चलूं, मैं भी मोक्ष मार्गियों की सेवा कर सकूं। इतनी भावना ही नहीं कर पाए सेवा तो भी भावना बनाई जा सकती, इसमें कोई वो नहीं है मेहनत का काम। तो आज अपन यही भावना भाते हैं कि मोक्ष मार्ग पर चलने की भावना बनी रहे, और जो मोक्ष मार्गी हैं उनके जीवन में उनकी सेवा करने की भावना हमारे अंदर बनी रहे, और कुछ ना बने तो अपनी कषाय मंद होवे ऐसी भावना तो बनी ही रहे। इसी भावना के साथ आचार्य गुरुवर विद्यासागर में, हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है। वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता हूँ, तब शांत निराश
कुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में।
अंदर जाला हर की वाणी मानो धरती हो फुल झड़िया।
भव बंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियां।
तुम सादानी क्या कोई हो जश को देती जग की निधियां।
दिन रात लुटाया करते हो शम शम की अविनश्वर मणियां। त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम। मिथ्यातम नास वेखो ज्ञान के प्रकाश वेखो आप पर भास वेखो मानु शिव कानी है। वेखो जीवों के जताए वेखो काबू न सताए वेखो भव्य हो रे आनी है। लावाणी के ज्ञान पे सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो दो। जिन वाणी भारती तो जपो दिन रैन जो तेरो शरणा गए सोपा में सुख ग्रहे मुनिराज
ओम देव परम पूज्य स्वामी क्षमा सागर जी महाराज के पावन प्रिय चरणों में। ओम देव परम पूज्य स्वामी भव सागर जी महाराज के पावन प्रिय चरणों में। अनंत पद प्राप्त है
महाराज की जय।